पवित्रता और निर्मलता की मूर्त आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। दीदी का जन्म यज्ञ की स्थापना से एक वर्ष पूर्व 1935 में मुंबई महानगरी में हुआ। वहां रहते अपने मेडिकल स्टडी पूरी की और फिर बाबा का यह ज्ञान मिला, क्योंकि मुंबई में मम्मा बाबा आते जाते रहते तो मुंबई में ही रहते साकार मम्मा बाबा से आपकी भेंट हुई, आप ज्ञान मार्ग पर चले, दादियों से मिले और उसके बाद बाबा की ही राय से आपने सेवा केंद्र भी खोला और क्लिनिक भी खोला और दोनों तरीके से आप सेवा करते रहे। और जो सेवा केंद्र खोला वो आप यज्ञ की पहली कन्या है जिसको पिता ने दहेज के रूप में सेवा केंद्र दिया। और सेवा केंद्र पे क्लिनिक पे आप मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों तरीके से मानवता की सेवा करते रहे। और फिर 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए सेलेक्ट किया। तो 1971 से 78 तक विदेश की धरनी में अलग अलग स्थानों पर जाकर आपने खूब सेवाएं की, जैसे कि आप पहले लंदन गए, फिर उसके बाद अलग अलग स्थानों पर गए, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस आदि अलग अलग स्थानों पर जाकर आपने सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा के बच्चे निकालने के निमित्त बने। और फिर 78 में जाकर आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और बेस बनाने के बाद वहां पर 78 से लेकर 2008 तक रहकर आपने एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का खूब विस्तार किया। आज की डेट में इस एशिया पैसिफिक रीजन में करीब 18 देश हैं जहां बाबा के सेवा केंद्र चलते हैं और बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं। तो वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं और उसके बाद तो बाबा ने 2009 में आपके कंधों पर एक दूसरी जिम्मेवारी रखी, आपको ज्ञान सरोवर में बुलाया, भारत में बुलाया और ज्ञान सरोवर अकेडमी का डायरेक्टर पद की जिम्मेवारी भी आपके कंधों पर रखी। इतना ही नहीं, दादियां अव्यक्त होती चली गई तो और एक जिम्मेवारी आपके कंधों पर आई और आप वर्तमान में यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। और इतनी सारी जिम्मेवारियां झेलते हुए निभाते हुए हम दीदी को देखते हैं, दीदी बिजी तो रहते हैं पर उस बिजीनेस के अंदर इजीनेस भी बहुत है। बिजी और इजी का बहुत सुंदर बैलेंस, बहुत ही लाइट और बहुत ही उपराम स्थिति, बहुत ही मितभाषी, बहुत कम शब्दों में बाबा के गहरे गहरे रहस्य समझा देते हैं। तो बहुत ही प्रतिभाएं हैं, हम कहेंगे साकार मम्मा बाबा की पालना लेकर, दादियों की पालना लेकर, बाबा की शिक्षाएं लेकर अपने जीवन में उनको उतारा है, अपने जीवन को उन शिक्षाओं के आधार से गढ़ा है। तो आज भले दादियां हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमारे लिए यही आदर्श दादियां हैं। तो ऐसे हमारी दादी सब दीदी से हम आज सुनेंगे इस भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उद्देश्य बहुत ऊंचा है, महसूसता द्वारा संपूर्णता, लेकिन ऊंचे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। तो दीदी फॉलो फादर कैसे करें, फॉलो फादर मदर कैसे करें, इस पर प्रकाश डालते हुए जो बेहद का हमारा लक्ष्य है महसूसता द्वारा संपूर्णता, इसको भी अपने अनुभवों के आधार से हमारे सामने रखेंगे। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। लक्ष्य हमारा है संपन्न संपूर्ण बनना, इसलिए तपस्या करते हैं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हो, पांडव भवन में आपको चांस मिला है मौन तपस्या करने का। तो ये जो तीन चार दिन यहाँ है, लक्ष्य रखना कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय बाबा की याद में बिताना है। तीन प्रकार का मौन रखना, मन का मौन, मन में व्यर्थ संकल्प ना चले, बोल का मौन, हो सके तो किसी से बात नहीं करनी। आज की रात जिससे भी मिलना है मिल लो, फिर मौन रखो। और तीसरा है मोबाइल का मौन। कौन कौन मोबाइल का मौन रख सकते हैं? गुड। तो ये तीन प्रकार का मौन रखेंगे तो आपकी तपस्या एकाग्रता तेज होंगी। और संपन्नता का एग्जाम्पल हमारे सामने मम्मा बाबा थे। आप में से कितनों ने मम्मा बाबा को देखा है? एक ने भी नहीं। मम्मा तो पहले ही चली गई थी। हमारा भाग्य था मम्मा को मिलने का। पहले ही दिन जब मैं बम्बई में सेंटर पर गई, मम्मा का प्रवचन था। संडे संडे मम्मा प्रवचन करती थी और ब्राह्मण अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स पहचान वालों को बुलाते थे, तो मुझे भी बुलाया गया था। तो मम्मा माँ की मूरत थी और प्यार की मूरत, सबकी माँ बन के पालना की। कुमारी होते भी माँ की पालना की, इसलिए कोई कुमारी नहीं कह सकती कि हम सरेंडर कैसे हो। और ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की उम्र में ज्ञान में आए, तो कोई कह नहीं सकता है कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे पढ़ाई पढ़ूं। दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने थे। आप लोगों ने भल उनको देखा नहीं, परंतु सुना और पढ़ा जरूर होगा। तो जितना हम उनको फॉलो करेंगे, उनके समान बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, तो क्या क्या फॉलो करना है? हर कदम, बोल, संकल्प और कर्म करते समय चेक करना है, बाप समान है। और चेक करके साथ साथ अपने को चेंज करना है, पुरानी चाल, पुराना बोल, पुराना ढंग ना हो। नई दुनिया में जाना है, सब कुछ नया हो। बाबा हमेशा अशरीरी और निराकारी स्थिति में रहते थे। कर्म बंधन से मुक्त थे, कर्म संबंध निभाया जरूर, अपने परिवार को साथ में रखा, लड़के छोड़ के गए, छुट्टी दे दी, परंतु शुरू में तो सबको साथ में रखा और अपनी जो कमाई थी सब परिवार को पूछा कि मैं यज्ञ में सरेंडर करूं, ट्रस्ट को सरेंडर करूं, और कर दिया। देह में रहते विदेही स्थिति थी, तन के बंधनों से भी मुक्त थे, लगन में मगन रहे, धन का एक एक पैसा सफल किया, तो ब्रह्मचारी तो थे और हम भी ब्रह्मचारी रहते हैं, पर अभी ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा के आचार विचार को फॉलो करना है। मुरली में बाबा के सत्यता की अथॉरिटी थी, कभी डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, और लोग कहते थे, इतने तक कि CID आई और कहे कि आपकी मुरली में आपने क्यों कहा कि जमीन के टुकड़े के लिए चाइना के साथ मत लड़ो। बाबा ने कहा, वो तो ऊपर वाले ने कहा, मैंने थोड़ी कहा। तो स्नेह भी था, अथॉरिटी भी थी, निर्माण भी थे, महान भी थे। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा को समाचार सुनने में इंटरेस्ट होता था और प्यार से सुनते थे, पर अंत में कहते थे थोड़े में सुना दो। तो एक घंटे के समाचार 5 मिनट में सुन लेते थे। और सार समझकर बच्चों को खुश करते थे। सर्व के सहयोगी बने, जहां स्नेह है सहयोग होता ही है। गुण ग्राहक, जरूर बनना है, लेकिन फॉलो फादर, इम्प्रेस नहीं होना किसी से, पर उनों के गुण है हमें धारण करने। बेहद का वैराग्य था, उनको हम कहते थे बाबा बम्बई आओ, दिल्ली आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाबा कहते हैं क्या है, दुनिया जंगल है, सब जानवर है, बंदर है, क्या देखना है। कर्म भोग जरूर था, डायबिटीज था, खांसी थी, पर कर्मेंद्रियों पर अधिकार था और राजऋषि थे। और सबको उमंग उल्लास दिलाते रहे, सेवा खुद प्रवचन करने, मम्मा बाबा पब्लिक में नहीं जाते थे, परंतु सबको उमंग उल्लास दिलाते थे कि यहाँ जाओ, सेवा करो, मंदिरों में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सभाओं में जाओ। तो सबको उत्साह दिलाया, हिम्मत दिलाई, ना उम्मीद को भी उम्मीदवार बनाया। और सेवा के योग्य बनाया। बाबा के बोल मधुर, अनमोल और युक्ति युक्त होते थे। और चाहे बच्चे है, चाहे यंग है, चाहे बूढ़े हैं, सबसे प्यार किया। और सब समझते थे बाबा मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सदैव मौज में रहते थे, सहनशील रहते थे, असंतुष्ट को संतुष्ट किया। साइलेंस की पावर से सबको आगे बढ़ाया। और बाबा के सामने यहां जो भी कोई आते थे, स्थूल सूक्ष्म सौगात जरूर ले जाते थे। अभी भी आप देखते हैं कि जो भी आते हैं एक दो दिन के लिए भी उनको सौगात मिलती है और हर कर्म साक्षी दृष्टा त्रिकालदर्शी बन के करने से उन्हों का कोई पाप कर्म नहीं हुआ। व्यक्ति को बाबा बहुत जल्दी पहचान लेता था, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे कि बाबा जान लेता था। जब सुदेश बहन पहली बारी यहाँ अपनी माँ के साथ मौसी के साथ आई, कोर्स भी नहीं किया था, तो बाबा ने कहा कि ये नाइटिंगेल बनेंगे। और सचमुच ऐसे क्लास कराती है सुदेश बहन। और मैं भी यहाँ आई भी नहीं थी, सिर्फ फोटो भेजा और हमने अपनी कर्म कहानी भेजी। हम आते ही ज्ञान में पहले एक महीने के अंदर बाबा को पत्र लिखते थे कि बाबा मैं आपकी बच्ची बनी हूँ, और थोड़े समय के बाद हम एक मास दो मास के बाद पत्र लिखते थे कि हमने क्या पाप कर्म किया है। खास कोई पाप कर्म तो किया नहीं था, तो हमने पत्र भी लिखा और रतन मोहिनी दादी यहाँ आती थी तो उसने पत्र लेके आई तो कहा बाबा ने तो आपका भविष्य पहचान लिया। और पत्र में फिर टाइटल लिखता था और हमारी पवित्रता का उनको ख्याल आ गया तो निर्मल आश्रम कहते थे। तो बाबा हमेशा एक रस रहते थे, कोई डर नहीं था। गुण दान ज्ञान दान देते रहे। और अंत में उनका पाठ रहा ब्लेसिंग देने का। उदार चित्त, उदार दिल, एक तरफ इकोनॉमी भी थी। हमेशा कहते थे कम खर्च करो बालानाशी, और बेगरी पार्ट में तो बहनों ने दादियों ने बहुत कुछ सहन किया। जानकी दादी अपना अनुभव सुनाती है कि क्या करती थी, कहाँ से कहाँ तक मुंबई में पैदल जाते थे सेवा के लिए। और खाने में केला चने मूंगफली ये खाना, और एकदम शुरू में जब तक सेंटर नहीं था मकान नहीं था तो ये लोग पहाड़ पर सो जाते थे, पत्थर को तकिया बनाते थे। और बाबा के जीवन में बैलेंस था, इसलिए ब्लेसिंग मिलते रहे। प्यार भी था सबसे तो नष्टमोहा भी थे। जब दादा विश्व किशोर ऑपरेशन में था बंबई में, वैसे उनको हाई ब्लड प्रेशर था तो कई डॉक्टरों ने मना किया, पर एक डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं करूंगा। तो 5-6 दिन के बाद शरीर छोड़ा, पर जब हॉस्पिटल में थे बाबा रात को भी जागकर सकास दे रहे थे, पर मर गए, शरीर छोड़ा। तो मुंबई वालों ने फोन किया कि बाबा ले आवे पार्थिव शरीर को, बाबा ने कहा नहीं शरीर को क्यों लाना है, अभी तो शरीर आत्मा चली गई वहीं जला दो। तो स्नान करते थे उस समय, एक मिनट भी नहीं रुके, क्या हुआ नहीं। और फिर रोज भोग लगाते थे बंबई में, हमारे पास शील दादी और पुष्प शांता दादी दो संदेशी थे उस समय, रोज भोग लगाते थे और संदेश भेजते थे। और उन दिनों में फास्ट पोस्ट ऐसे होती थी कि सेंट्रल स्टेशन पर पोस्ट दे आते थे, दूसरे दिन सवेरे मिल जाते थे, ट्रेन के टाइम में पोस्ट मिलते थे। तो जब संदेश आता था तो यहाँ मनोहर दादी थी, मनोहर दादी कहती है ये तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश आते हैं बाबा क्लास में सुनावे। बाबा कहे नहीं, संदेश सुनेंगे तो भाव की याद आएंगे, शरीरधारियों को थोड़ी याद करना है। नम्रता और नशे का बैलेंस था। बच्चों को रोज नमस्ते करते थे, पर बच्चों को कभी पांव लगने की या ऐसे नहीं किया, अलाउ नहीं किया। और नशा भी था कि मैं बाबा का मुर्बी बच्चा हूं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मुझे अच्छा ही किराया मिलेगा। बालक और मालक का भी बैलेंस था। मालिक बन के ऑर्डर करते थे और बालक बनकर राय भी लेते थे, क्योंकि उस समय अपने जगदीश भाई थे, रमेश भाई थे, ब्रिजमोहन भाई थे, सब पढ़े लिखे थे, तो उनकी राय भी लेते थे। तो रमेश भाई की राय से वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट शुरू किया। रॉयल भी थे तो सादगी भी थी, ड्रेस बदली नहीं किया है, वही कुर्ता और धोती पहनते रहे। गंभीर भी थे तो रमणीक भी थे। दादी प्रकाशमणि बंबई में थी, शुरू शुरू में इतनी सेवा नहीं थी, तो बाबा ने क्या किया, मरी हुई मक्खी एनवलप में डालकर भेजी कि तुम मक्खियां मारती है ना, जिम्मेवार भी थे तो अपने में निमित्त भाव भी था, इसलिए हल्के रहे। केयरफुल भी थे तो केयरफ्री भी थे, कोई चिंता नहीं थी, परंतु तन मन धन मन वचन कर्म सभी मूल्य सभी का मूल्य समझकर व्यर्थ नहीं गंवाते थे। क्या था कि शुरू शुरू में हम जब ज्ञान में आई 62 में, तो उस समय 12 बजे भोग लगता था और संदेशी ध्यान में जाती थी, खेल खेलती थी, तो सारा समय गुरुवार का उसमें ही चला जाता था, मुरली सुनने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो बाबा ने कहा गो सुन कम सुन, और नेचुरली है यदि कोई संदेशी ज्यादा टाइम लेती थी, बाबा अपनी मुरली यहाँ चलाते रहते थे। निरंकारी निराकारी निर्विकारी, वो स्थिति को पाया था, बेहद की दृष्टि थी कि मैं प्रजा का पिता हूं, सबको पिता की दृष्टि से देखते थे। चाहे लेबर था तो भी देखता था कि इसके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, तो लच्छू दादी को कहता था बच्ची इस बच्ची को गरम दो, स्वेटर दो, और चिड़िया को भी बच्ची कहता। यहाँ झोंपड़ी में दिन में अपना 10 बजे पोस्ट पूरी करके गर्मी के दिनों में यहाँ बैठता था, तो एक चिड़िया आती थी तो लच्छू को कहता था बच्ची इस बच्ची को टोली दो, तो रोज चिड़िया उसी टाइम आती रही। बाबा कहते हैं बच्चों को शरीर और आत्मा का बैलेंस रखना है, शरीर को भी ठीक बैलेंस डाइट देना है, तो आत्मा का भी ज्ञान योग में टाइम सर बैठना है। दादी जान की एक बारी बीमार थी, तो बीमार होने के कारण खाना नहीं पकाती थी, भोग नहीं लगाती थी। बाबा को मालूम पड़ा, कहा तुम बीमार हो, बाबा थोड़ी बीमार है, बाबा को भोग लगाओ, भोग लगाना है तो पकाना भी पड़े तो खाएंगे भी खरे। कोई भी बुरी आदतें ना रहे यह ध्यान रखना है, और पढ़ाई जरूर पढ़नी। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो चाहे घर गृहस्थ में रहते हो, बाबा कहते हैं मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा ज्ञान मुहूर्त थे, योगी थे, निरंतर योगी, सर्व समर्पण किया उन्होंने और अड़ग निश्चय था कि ये बाबा का कार्य है। अतूट प्रेम, अथक सेवाधारी, इस कारण इन कारणों से बाबा नंबर वन गए। लौकिक अलौकिक का बैलेंस क्योंकि शुरू में जो 14 साल साथ में रहे, लौकिक भी थे अलौकिक भी थे, तो उनकी दृष्टि सबके लिए समान थी। ऐसे नहीं लौकिक को फेवर करें, क्योंकि जैसे यज्ञ माता निर्मल शांता या ब्रिजेंद्र आदि को नहीं बनाया बेटी बहू को, परंतु मम्मा को बनाया। बैलेंस योग और सेवा का था मामा के। क्योंकि जिस समय फ्री होते थे, योग में होते थे, पर सेवा का भी उमंग था, ज्ञान रत्न देते रहते थे। समझो हम लोगों को मालूम था बाबा की दिनचर्या क्या है, तो हम लोग रास्ते में खड़े हो जाते थे, बाबा की दृष्टि भी मिलेंगी और दो वचन भी मिलेंगे, तो बाबा किचन में भी चक्कर लगाते थे, कंस्ट्रक्शन में भी चक्कर लगाते थे, तो बाबा के साथ हलो करने का चांस मिलता था। तो हम लोग क्या करते थे, दो बहनें मिलकर बाबा के पास 5:30 जाते थे, क्योंकि उस समय बाबा यहाँ आंगन में लेटा हुआ था, क्योंकि यहाँ जो अभी वो है ना, जहाँ जूते उतार करके अंदर जाते हैं, वहाँ क्या था पहले उस समय बंद था, तो वहाँ खटिया रखी थी, वहाँ लेटे रहते थे और साइड पर बैठने के लिए बनाया था पत्थर की सीट। तो हम लोग जाते थे, बाबा कहते थे आओ हंसों का जोड़ा, हम तो जाने होते थे, और कुछ न कुछ अपनी मनन मंथन का पॉइंट सुनाते थे। और जब भी हम फ्री होते थे, क्योंकि भोजन के बाद हम फ्री है, तो उस समय बाबा खेलते थे चौपट या ताश, और उसमें भी संदेशी दादी हमेशा जब भी आते थे तो बाबा के साथ खेलते थे। ब्रजमोहन भाई भी जब ये आता था तो बाबा के साथ ताश खेलता था। तो हमको मालूम था बाबा की ये दिनचर्या है, तो हम लोग जाके सिर्फ ऐसे पर्दा करके झांकते थे तो बाबा कहेंगे आओ बच्ची आओ, हम दृष्टा के रूप में बैठ जाते थे। इत्फाक कभी खेलते भी थे और बाबा बच्चों के साथ फ्रेंडली बैडमिंटन खेलता था। यहाँ जहाँ से हम डाइनिंग में जाते हैं ना, तो वहाँ बैडमिंटन खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे। तो बच्चों से भी प्यार करते थे, खिलौना देना, टोली देना, तो बच्चे भी पहुंच जाते थे बाबा के पास, क्योंकि टोली मिलती है तो सब पहुंच जाते हैं ना। तो बाबा सब बच्चों को खुश करता था, किसी को फ्रेंडली रूप में, किसी को शिक्षा के रूप में, और शिक्षा भी जनरल मुरली में ही देता था। ऐसे नहीं कि पर्सनल नहीं, पर्सनल तो बाबा हमेशा प्यार से मिठास से बच्चों से बात करते थे। बाबा को मालूम होता था कि कई बच्चे तो जैसे लुटारे थे या कईयों ने खून भी किया था पास्ट में ज्ञान के पहले, पर बाबा उनसे भी प्यार से मिलते थे। तो इसी रीत से बाबा ने सब बच्चों की पालना की, मम्मा ने भी पालना की, क्योंकि मम्मा तो माँ के रूप में थी, तो इसलिए नेचुरली मम्मा ज्ञान तो देती थी, हर एक की फरियाद भी सुनती थी, क्योंकि उन दिनों में वो लोग कचेरी करते थे मम्मा बाबा, कि आज किसने किसको दुख दिया, किसने किससे दुख मिला आदि आदि। और यदि कोई कंप्लेन करना है तो ज्यादातर लोग मम्मा के पास जाते थे, और मम्मा एक की कंप्लेन सुन दूसरे जो सामने वाली पार्टी को भी साथ में बुलाती थी और उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो प्यार से समझाती थी। इसलिए मम्मा से मिलने में किसी को डर नहीं लगता था, क्योंकि प्यार से समझाती थी। तो बाबा मम्मा हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया। और आप सभी ने तो कुमारका दादी की पालना ली होंगी, किन्हों के कुमारका दादी की पालना ली है? तो दादी भी बाबा को बहुत अच्छा फॉलो किया, दादी भी सबको बहुत अच्छी रीति से मिलते थे। और जैसे भी अपॉइंटमेंट मांगते थे फौरन बातचीत कर दे देती थी। क्या कहे, मैं बम्बई में थी तो वहां भी दादी की पालना मिली। फिर जब विदेश गई तो भी शुरू शुरू में 74 तक दादी प्रकाशमणि की पालना होती थी। और बाद में जब जानकी दादी आई उससे राय सलाह करते थे। पर दादी जानकी के पास लंबी क्यू होती थी इंद्रप्रस्थ में, तो कई बार मुझे तो धीरज नहीं रहती थी, तो मैं दादी प्रकाशमणि से टाइम लेकर चलती थी। तो दादी फौरन कहती थी आओ आओ, और 5 मिनट में हमारा काम हो जाता था। और दादी भी इतनी निमित्त भाव था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के टाइम सिर्फ थोड़े सेंटर थे और दादी के टाइम 140 देशों में सेंटर हो गए। पर दादी हल्की, हमेशा हर्षित, और सोने जाती थी 2 मिनट में नींद आ जाती थी। तो इसलिए दादी प्रकाशमणि ने बाबा की सेवा बहुत बढ़ाई। लोग सोचते थे कि ब्रह्मा बाबा मम्मा गए, अब हमारा कौन। तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए सभी बहुत मुंझे हुए थे कि अभी क्या होगा, यज्ञ में क्या होगा। पर बाप दादा ने संदेशी द्वारा 21 तारीख को संदेश दिया कि मुरली रिवाइज होंगी, दीदी दादी यज्ञ की संभाल करेंगी और बाबा आपसे मिलते रहेंगे। तो जब ये संदेश मिला सभी हल्के हो गए कि अभी हमें सहारा मिला। तो जो नहीं भी आए थे अंतिम संस्कार में वो भी दादी ने सबको बुला लिया, क्या जाओ आके रिफ्रेश होके जाओ। तो इसलिए देखा गया है बाबा अपना कार्य कराते रहते, अपने रथ द्वारा। बाकी ये आपको मालूम हो कि तीसरा रथ बाबा नहीं लिया है न लेगा। एक बहन अपने आप को तीसरा रथ कहलाती है, देवकी मैया कहलाती है, और तीसरा रथ। और धीरे धीरे उसके प्रोग्राम में हजारों लोग आने लगे हैं अभी, और हमने सुना है अगस्त में, 15 अगस्त एक 1,00,000 लोगों को शांति वन के आसपास कहाँ अब रोड पर प्रोग्राम करेंगे। तो श्रीमंत शाह भी उसके साथ जुड़ गया और वो भी एडवर्टाइज करता है और अपने डायबिटीज का प्रचार करता है। तो देखो बाबा कहते हैं अंत में कई झूठे लोग हैं वो भी अपने को भगवान कहलाएंगे। तो वो वीरेंद्र दीक्षित, उसने अपनी शंकर पार्टी शुरू की कि अभी बाबा ब्रह्मा बाबा नहीं है तो बाबा मुझे निमित्त बनाया है। अभी तो वो जेल में पड़ा है या गुम हो गया है। तो ये है कलयुगी झूठी दुनिया में झूठ या सच लोग जान नहीं सकते हैं, इतना झूठ हो गया है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।